गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादे पाश्चात देश तारिणे गुरवे गौरचंद्राय राधिका तदाल्यै कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवते नैष्ठिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ संस्थापक आचार्य श्री कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की अपार कृपा से गंतोक सिक्किम में इस्कान के गतिविधियों के अंतर्गत 8 दिन के लिए श्रीमद् भागवत के सत्संग का आयोजन किया गया है और प्रातः काल रोज भक्तों के पोषण और रसास्वादन के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण के पहले स्कंद के नारद व्यास संवाद के विषय का श्रवण वर्णन चल रहा है। 6 अध्याय में हम देवऋषि नारद साधु संघ का प्रभाव और उनकी शिक्षाओं का अभ्यास क्या अनुभव कराता है जीवन में वो व्यास देव को सुना रहे हैं। कल तक हमने 29 श्लोक पढ़े थे 6 अध्याय के पहले स्कंद में, आज 30वां श्लोक पढ़ेंगे जो नारद जी व्यास देव को अपना अनुभव बता रहे हैं, एक्सपीरियंस बता रहे हैं, स्पिरिचुअल रियलाइजेशन बता रहे हैं। आइए इस श्लोक का पाठ करते हैं। सहस्र युग पर्यन्ते उठाए इदं सिसृक्षतः
मरेचि मिश्रा ऋष्यः प्राणेभ्यो अहं च जग्नरे
सहस्र युग पर्यंतम मतलब 1000 युग बीतने के बाद 1000 युगों की साइकिल इसका मतलब ब्रह्मा जी की रात जितना ब्रह्मा जी का दिन उतनी ब्रह्मा जी की रात यह श्रील प्रभुपाद ने लिखा है कि 4 अरब 30 करोड़ साल के बाद 4 अरब 30 करोड़ साल के बाद क्या हुआ ब्रह्मा जी नींद से जाग गए ब्रह्मा जी का दिन शुरू हुआ पर्यंत इतने समय के बाद जब ब्रह्मा जी उठाएदम जब ब्रह्मा उठ गए जो सो गए थे ब्रह्मा उठ गए तो उठ के ब्रह्मा क्या करेंगे सिसृक्षतः पुनः सृष्टि करने का काम शुरू किया सिसृक्षतः मतलब सृष्टि करना जो ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं तो उस समय मरीचि मिश्रा ऋष्य उस समय मरीचि और अन्य ऋषियों का श्री प्रभुपाद ने नाम लिखा है अंगिरा अत्रि आदि जो सप्तऋषि असल में क्या है ब्रह्मा जी के एक दिन को हम मनवंतर कहते हैं तो हर मनवंतर में एक भगवान का अवतार होता है उसको मनवंतर अवतार कहते हैं एक योग्य व्यक्ति को इंद्र चुना जाता है जो शासन संभालता है और 7 ऋषि चुने जाते हैं जो धर्म का कार्य करते हर मनवंतर में भगवान मनवंतर का अवतार 7 ऋषि एक इंद्र चुन के और मनवंतर का कार्य शुरू करते हैं और एक मनु एक इंद्र 7 ऋषि ये भगवान का अवतार चुनता है तो ये मनवंतर का शासन है मनवंतर असल में क्या है मनवंतर शासन है ब्रह्मा जी के दिन का एडमिनिस्ट्रेशन है और मनवंतर के लिए दूसरा शब्द भागवत में आया है मनवंतर अर्थ शब्द है सद्धर्म मनवंतर को कहते हैं सद्धर्म सद्धर्म का मतलब कोई मनु तपस्या सिखाता है एक मनु ने एकादशी को आरंभ किया एक मनु ने ब्रह्मा वैकुंठ बनाए तो ये मनु आते हैं कोई न कोई सद्धर्म की स्थापना करते हैं तो वो धर्म के पालन करने से लोग अपना कल्याण करते हैं तो 7 ऋषि बहुत सारे ऋषि हैं ये सारे ऋषि ऊपर के लोकों में तप लोक जन लोक में ये ऋषि रहते हैं उनमें से कोई 7 ऋषि एक मनवंतर के लिए चुने जाते हैं फिर जब दूसरा मनवंतर आता है तो दूसरे ऋषि चुन लेते हैं तो ये ऋषि हमेशा आते जाते रहते हैं जैसे अगले मनु आने वाले मनवंतर के लिए ये घोषणा की गई है कि अगले वाले मनवंतर में कौन मनु बनेगा बलि महाराज इंद्र बनेंगे सप्तऋषियों में अश्वस्थामा सप्तऋषियों में एक ऋषि बनेगा तो ये घोषणाएं पहले की जाती है भागवत में आने वाले 7 मनुओं के भी नाम लिखे हुए तो उस वक्त ये ऋषि भी प्रकट हुए फिर कहते हैं प्राणेभ्यो का मतलब श्वास के द्वारा प्राणेभ्यो का यहां लिखा है प्राणेभ्यो प्रभुपाद ने लिखा है इंद्रियां आउट ऑफ हिज सेंसेस हिज का मतलब भगवान के श्वास से अहम मैं भी जिग्नरे प्रकट हुआ जब ब्रह्मा जी की रात होता है तो सारे के सारे श्वास के द्वारा गर्भोदक्षाई विष्णु में प्रवेश करते और जब ब्रह्मा जी उठने का समय होता है तब उससे उठ के आ जाते हैं वो प्रकट होके आ जाते हैं तो श्री प्रभुपाद जी का लिखते हैं कि 4 अरब 30 करोड़ साल के उपरांत जब ब्रह्मा जी जागे और पुनः सृष्टि करने का काम शुरू किया भगवान की इच्छा के अनुसार
तो उस समय सब ऋषि जैसे मरीचि, अंगिरा, अत्रि आदि वो भी प्रकट हुए। कहां से? भगवान के दिव्य शरीर से। और मैं भी ऐसे ही प्रकट हो गया। तो नारद जी दूसरे कल्प की बात बता रहे हैं। तो ब्रह्मा जी के एक कल्प में उन्होंने तपस्या की, दूसरे कल्प में वो फिर कैसे प्रकट हुए ये बात कर रहे हैं। और श्रीला प्रभुपाद जी पहले तो लिखते हैं कि ब्रह्मा जी के एक दिन का समय कितना होता है। सहस्र युग, सहस्र कहते हैं हजार को, हजार बार चार युग, चार युग बदलते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। तो इतनी बड़ी भगवान ब्रह्मा जी की रात होता है। और जब ब्रह्मा जी आराम करते हैं रात को योग निद्रा में, तो वो भगवान गर्भोदक्षायिक विष्णु के अंदर प्रवेश करते, जो ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का कारण है। ब्रह्मा जी गर्भोदक्षायिक विष्णु से उत्पन्न हुए हैं, तो उसी में वापस जाके योग निद्रा में सो जाते हैं। और पुनः जब सृष्टि करनी होती है तो फिर ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, बाहर आ जाते हैं ब्रह्मा जी, और उनके साथ ऋषि भी प्रकट होते हैं। वो कहां से प्रकट होते हैं? तो कहते हैं भगवान के दिव्य शरीर से। और नारद भी प्रकट होता है। अब प्रभुपाद जी सिद्धांत क्या बता रहे हैं, इसका अर्थ है कि जैसे हम रात को सोते हैं उसी शरीर से सुबह उठते हैं, तो ऐसे जिस शरीर से नारद जी सोया उसी शरीर में वापस उठ के आ गया। बाकी जीवों की जब सृष्टि होती है तो नया शरीर मिलता है उनको, क्योंकि भौतिक होता है। नारद जी का शरीर है आध्यात्मिक, चिन्मय, सच्चित आनंद, इसलिए जब वो दोबारा उठता है तो उसी शरीर में उठ के आता है। प्रभुपाद जी लिखते हैं नारद, दिस मीन्स दैट नारद अपियर इन हिज सेम ट्रांसेंडेंटल बॉडी एज द मैन वेक्स फ्रॉम द स्लीप इन द सेम डे। सेम बॉडी, जैसे रात को सो के सुबह उठते हैं उसी शरीर में, ऐसे नारद भी उसी शरीर में प्रकट हुआ। इसका अर्थ यह है कि नारद का शरीर दिव्य है, और उस दिव्य शरीर में वो भौतिक या आध्यात्मिक जगत में कहीं भी आ जा सकता है। और प्रभुपाद जी एक शब्द में लिखते हैं कि नारद के शरीर और आत्मा में कोई अंतर नहीं है। नारद जी का शरीर और आत्मा एक ही चीज का बना हुआ है। हमारा आत्मा तो है सच्चिदानंद, लेकिन हमारा शरीर है पांच भूतों का बना हुआ, ये अंतर है। लेकिन नारद के शरीर में कोई प्रकृति का तत्व है ही नहीं, सारा ही चिन्मय है, जैसे भगवान का शरीर चिन्मय होता है। उदाहरण एक देते हैं समझने के लिए कि चिन्मय शरीर कैसे समझना चाहिए। दिवाली के दिन थे, घरों में मिठाइयां बनते हैं, साधु एक बाहर से जा रहा था भिक्षा के लिए, तो घर में बच्चे लड़ाई कर रहे थे। एक बच्चा बोल रहा था मैं ट्रैक्टर खाऊंगा, दूसरा बच्चा बोल रहा था मैं कार खाऊंगा, तीसरा बच्चा बोलता था मैं हाथी खाऊंगा। तो महाराज आश्चर्य हो गया कि ये कौन है जो सुबह सुबह नाश्ते में ट्रैक्टर खा लेता है, कार खाता है, हाथी खाता है। दरवाजा खटखटाया, बोला माता जी। बोला अभी पूजा नहीं है महाराज, भिक्षा नहीं दे पाएंगे। बोला भिक्षा नहीं चाहिए, ये मुझे तुम्हारे बच्चे बताओ जो नाश्ते में ट्रैक्टर और वो जीप खा रहे हैं और हाथी खा रहे हैं। और बोलती है माता जी, महाराज ये मिठाई के कोई हाथी जैसा टॉफी है, कोई ट्रैक्टर जैसा टॉफी है, कोई गाड़ी जैसा टॉफी है, ये टॉफी के लिए लड़ रहे हैं। तो मिठाई कोई कोई रूप में बनाते हैं तो सारे की सारी मिठाई होती है, उस मिठाई के अंदर वो हाथी वाके हार्ड मांस चाम कुछ नहीं है, सारा ही चीनी का बना हुआ होता है। तो ऐसे भगवान का शरीर और जो मुक्त आत्माएं हैं नारद आदि, इनका शरीर पूरे का पूरा आध्यात्मिक तत्व का बना हुआ है। जिस चीज की हमारी आत्मा बनी हुई है उस चीज का उनका पूरा शरीर बना है, उनकी इंद्रियां उनके शरीर भौतिक नहीं है। और ऐसे शरीर जब चाहें तब प्रकट हो सकते हैं, जब चाहें कहां जा सकते हैं, उनको कोई रोक थाम नहीं होती है। तो नारद जी अपने जीवन का ये अनुभव बता रहे हैं, उनको ये याद है कि मैं ब्रह्मा जी के अगले दिन में ये तपस्या की, इस ब्रह्मा जी के दिन में मैं दोबारा प्रकट हुआ। तो ब्रह्मा जी की रात के बाद तो ऐसी कई ऋषि लोमस आदि ब्रह्मा जी के कई कल्पों तक जीते हैं, कल्पांतर जीते हैं। उनका कोई कितने कल्प बीत गए हैं, कितने ब्रह्मा जी के दिन बीत, अभी तक वो जीवित है। तो ऐसे कुछ महात्मा हैं। तो अब आगे वाले श्लोक में नारद जी अपना और एक अनुभव बताते हैं। अंतर्बाहश्च लोकां त्रिम परयम्याः असकन्दितः व्रतः अनुग्रहान् महाविष्णो अविघात गति क्वचे। नारद जी के अंतर बहिर च लोकां त्रिण, ये तीन जो भौतिक लोक है, ये भौतिक प्रकृति में तीन विभाग है, 14 भुवन कहते हैं, 14 लोक है, उसको तीन में बांटते हैं। एक को कहते हैं ऊपर के लोक, नीचे के लोक, मध्य के लोक। जैसे भगवत गीता में श्लोक आता है, ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसा जगन गुणवृत्ति अधो गच्छन्ति तामसा। तो ये जो श्लोक है तीन भौतिक जगत के तीन विभाग, ऊपर के लोक, नीचे के पाताल आदि लोक और पृथ्वी लोक, तो ये तीन विभाग है। इन तीनों में नारद जी कहता है जब मैं चाहूं तब जा सकता हूं, आ सकता हूं। एक तो हो गए 3 लोक, और फिर आगे कहते हैं हाँ परयम्य, परयम्य का मतलब पर्यटन करता हूं, घूमता रहता हूं। क्यों भाई आपको इतनी घूमने की शक्ति कहां से आ गई, कैसे मिल जाती है जिसो? तो कहते हैं असकंदित वर्त, अखंडित, असकंदित का मतलब अखंडित वर्त, क्योंकि मैं निरंतर भगवान की भक्ति में लगा हुआ हूं। असखंड वृत का प्रभुपाद जी अर्थ लिखते हैं अनब्रोकन, वो मेरा ऐसा वचन वर्त, तो वो वर्त तो वर्त ही है, अखंडित वर्त, वो वृत ऐसा है कि मैं भगवान का निरंतर गान करता रहता हूं। इसलिए अनुग्रह महाविष्णु, भगवान नारायण, भगवान श्री कृष्ण के अनुग्रह से उन्होंने मेरे ऊपर कृपा की है, मैं कहीं भी जा सकता हूं। अवघात, कोई रुकावट नहीं, कहीं भी कोई मुझे रोकता नहीं है कि क्यों आए। अवघात गति, मेरी गति को कोई रुकावट नहीं है, कभी भी कोई नहीं रोकता है। मैं चाहूं तो तीनों भौतिक प्रकृति के लोकों में चाहूं, चाहूं तो वैकुंठ लोक में चला जाऊं, लेकिन कोई मुझे कहीं रोकता नहीं है। क्यों नहीं रोकता है? क्योंकि भगवान का अनुग्रह है और मैं निरंतर उनकी भक्ति में लगा हुआ हूं। प्रभुपाद लिखते हैं भगवान की कृपा करुणा से मैं बगैर किसी रुकावट के आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत के तीनों विभागों में कभी भी आ जा सकता हूं। क्यों आ जा सकता हूं, क्या ऐसी मेरी विशेषता है? तो प्रभुपाद जी, इसलिए कि मैं अखंडित भक्ति करता रहता हूं। मेरा व्रत है अखंडित भक्ति का, अखंडित भक्ति को अप्रतिहिता, अप्रतिहिता जिसमें कोई मेरा हेतु नहीं है, भगवान के प्रेम की भक्ति में लगा हुआ हूं। श्री प्रभुपाद जी कुछ तात्पर्यों में लिखते हैं कि ये अनुभव नारद इसलिए बता रहा है कि हमको विश्वास हो जाए कि भक्ति करने से जब तीनों गुणों से परे हो जाएंगे तो ये ऐसी स्वतंत्रता भक्तों के जीवन में भी संभव है। तो प्रभुपाद जी का इसमें पहले 3 लोकों का वर्णन किया है तात्पर्य में, ऊपर के लोक, मध्य के लोक और नीचे के लोक, और उनके बाद इन तीनों लोकों, ऊपर से सबसे ऊपर लोक है ब्रह्मलोक, और ब्रह्मलोक के बाद इस सारे ये एक ब्रह्मांड के लोकों का वर्णन है। 3 लोक एक ब्रह्मांड के, हमारे ब्रह्मांड में 14 लोक है। ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड है, ऐसे ब्रह्मांड करोड़ों करोड़ों ऐसे और ब्रह्मांड है, लेकिन ये सारे ब्रह्मांड मिला के एक पाद विभूति बोलते हैं, भगवान की 1/4 एक पाद विभूति है, और 3 पाद विभूति, 3/4 आध्यात्मिक जगत है। जैसे इस धरती के ऊपर 3/4 समुद्र है, 1/4 भूमि है, भूमि है 1/4, 3/4 समुद्र है, जो जहां हम लोग इस पृथ्वी, पृथ्वी 1/4 है, 3/4 समुद्र है, ऐसे 1/4 एक पाद विभूति भौतिक जगत है, 3 पाद विभूति आध्यात्मिक जगत है, 3 गुना ज्यादा है। इसलिए कभी हम एक प्रश्न पूछते हैं लोगों से कि मुक्त जीव ज्यादा है या बद्ध जीव ज्यादा है, आपके विचार में मुक्त जीव ज्यादा है कि बद्ध जीव ज्यादा है? हाँ जी, प्रभु जी कह रहे हैं मुक्त जीव, आपका क्या विचार है? हाँ, बद्ध। अब दूसरा प्रश्न इसको कहते हैं, जेल में हमारे, आप मानोगे गणतोक में जेल में लोग ज्यादा हैं कि बाहर लोग ज्यादा हैं? बाहर ज्यादा है ना, तो भौतिक जगत है जेल, तो जेल में कम है, आजाद ज्यादा है, तो 3/4 3/4 आध्यात्मिक जगत है, वहां तो सारे मुक्त लोग हैं, 1/4 भौतिक जगत है जिसमें बद्ध लोग हैं और थोड़े बहुत मुक्त लोग भी आते हैं, तो इसका मतलब मुक्त लोग ज्यादा है, मुक्त लोग ज्यादा हैं, बद्ध लोग कम हैं, तो 3/4 आध्यात्मिक जगत है। प्रभुपाद जी इसका वर्णन कर रहे हैं, जिसमें स्वप्रकाशित वैकुंठ लोक है, ऐसे ब्रह्म संहिता से और भागवत से हमके पता लगता है कि ब्रह्मांड के सत्यलोक के बाद एक पर्दा होता है, कवरिंग, और जिस पर्दे का छेदन वामन देव के सीधे पांव के अंगूठे ने पर्दे को छेद किया, तो उस पर्दे के दूसरे तरफ वर्जा नदी है जिसको कारण सागर भी कहते हैं, उसका जल नीचे आया जिसको गंगा कहते हैं, तो वो जल की नदी है, उसके दूसरे पार वैकुंठ है, वो बाउंड्री है, भौतिक जगत की बाउंड्री ब्रजा नदी और फिर आध्यात्मिक वैकुंठ, और वैकुंठ कितने हैं? अनंत वैकुंठ है, एक वैकुंठ नहीं है, वैकुंठ कई है, और बहुत से अवतार जो नित्य हैं उनका वैकुंठ जगत में अपना लोक है, नरसिंह का अपना लोक है, जैसे नरसिंह भगवान का अपना लोक है वैकुंठ में, नरसिंह लोक है, ऐसे जो नित्य अवतार हैं उनके लोक है अपने, उनके भक्त उन लोकों में जाते हैं, और सारे वैकुंठ लोकों के ऊपर अनंत वैकुंठ लोकों में नारायण पूजित है, और वैकुंठ लोकों में 2.5 रस है मुश्किल से, एक तो शांत रस है, एक दास्य रस है, मुख्य रूप से वैकुंठ में शांत रस और दास्य रस 2 ही रस है, आधा रस लक्ष्मी माधुर्य रस की वहां सेवा करती है, नहीं तो सिर्फ शांत रस है, तो इसलिए भक्त वैकुंठ में रस सिर्फ शांत और दास्य है प्राय। वैकुंठों के ऊपर वैकुंठ, कई वैकुंठ है, उसके ऊपर साकेत है जहां भगवान रामचंद्र का लोक है, और साकेत के ऊपर 3 विभागों में पहले द्वारका है, फिर मथुरा है, फिर गोलोक वृंदावन है, और गोलोक वृंदावन जो है उसमें भी औदार्य धाम है और माधुर्य धाम है, औदार्य धाम में चैतन्य महाप्रभु और उनके परिकर है, और माधुर्य धाम कृष्ण और उनके परिकर है, तो ये सर्वोपरि ऊपर लोक है गोलोक, तो ये सारा आध्यात्मिक जगत जिसका अनुभव, जैसे नारद अपने जीवन का अनुभव अपने शिष्य व्यास देव को परंपरा की रक्षा, आचार्य परंपरा की रक्षा के लिए बता रहे हैं, ऐसे सनातन गोस्वामी पाद, श्रीला सनातन गोस्वामी पाद ने ब्रज भागवत अमृत में गोप कुमार के माध्यम से इन सारे लोकों का वर्णन किया है। भौतिक जगत में स्वर्ग आदि लोकों से लेके ब्रह्मलोक, कैलाश से लेके वैकुंठ और वैकुंठ से लेके गोलोक वृंदावन तक गोप कुमार के माध्यम से वर्णन किया है। तो इन लोकों का वर्णन हमको कहां से मिलता है? नारद जैसे ऋषि अथवा सनातन गोस्वामी जैसे आध्यात्मिक जगत से आए हुए जो भगवत भक्त है, वो थोड़ा सा संकेत से हमको समाचार इन लोगों का देते हैं। सो श्रील प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं कि नारद जी इन सब जगहों में आ जा सकते हैं, क्यों? तो कहते हैं नारद जी प्रकृति के तीनों गुणों से मुक्त है, और तीनों गुणों से मुक्त होने का साधन क्या है? अविविचारेण भक्ति योगेन सगुणान समतैते तान ब्रह्म भूयाय कल्पते। अर्जुन ने जब भगवद गीता में पहले तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दूसरे अध्याय में कहा निस्त्रगुण भव अर्जुन, अर्जुन तुम तीनों गुणों से ऊपर आ जा, क्योंकि तीनों गुणों से तुमको ऊपर आना पड़ेगा, क्योंकि मैं तीनों गुणों से परे है, मुझे समझना है तो तीनों गुणों से ऊपर आना पड़ेगा। तो अर्जुन को उस वक्त ध्यान में नहीं रहा, अर्जुन ने जाके फिर 14वें अध्याय भगवद गीता में पूछा कि भगवान तीनों गुणों से ऊपर कैसे जाया जाए। तब भगवान ने उत्तर दिया अविभिचारी भक्ति, अनन्य भक्ति से तीनों गुणों से ऊपर हो जाएगा और ब्रह्म के स्तर के मुक्त हो जाएगा, और मुक्त होगा तो फिर पराभक्ति को प्राप्त करेगा। ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते परम। तो असली भक्ति तो शुरू ही होती है ब्रह्म भूत स्तर के बाद। दो स्तर कहे गए हैं भागवत में, एक जीव भूत एक ब्रह्म भूत। जीव भूत का मतलब बद्ध आत्मा तीनों गुणों के अंदर काम करने वाला ब्रह्म जीव भूत कहलाता है, और जो तीनों गुणों से मुक्त हो गया वो ब्रह्म भूत कहलाता है। तो नारद ब्रह्म भूत के स्तर पे है, शुद्ध भक्ति कर पा रहा है तो मुक्त है। तो प्रभुपाद जी कहते ऐसे निरंतर कहीं भी जाना हो तो उसको तीनों गुणों से ऊपर जाना पड़ता है, और नारद जी इस स्तर पे है, इसलिए वो कहीं भी आ जा सकते हैं। और ये कैसे हुआ? ये भगवान विष्णु की अहितों की कृपा से। भगवान की कृपा से, इसलिए जो भक्ति का रास्ता है वो ऊपर से भगवान की कृपा आती है, और ज्ञान का रास्ता है अपने प्रयास से ऊपर जाना है। तो पंथ जो है, रास्ता जो है, एक होता है अपने प्रयास से ऊपर जाना, एक भगवान की कृपा से सब कुछ पाना। तो भक्ति का मार्ग है भगवान की कृपा के ऊपर आश्रित, ये कृपा प्रधान मार्ग है, ये भगवान की कृपा से संभव है। इसलिए अब प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं कि जो भक्ति के साधन से भगवान की कृपा को प्राप्त करता है। हम इसको कौन सी भक्ति, हम कौन सी भक्ति का पालन कर रहे हैं, कौन सी भक्ति है जिसका हम अभ्यास करते हैं? पंचअंग भक्ति, प्रायः पंचअंग भक्ति है जिसका हम पालन करते हैं। अर्चा विग्रह का श्रद्धा से पूजा करते हैं, श्रीमद् भागवत का शब्द के अर्थ के साथ श्रवण करते हैं, भक्तों का संग करते हैं, नाम का जप करते हैं, और धाम का वातावरण बना के उसमें रहते हैं अथवा भगवान के धाम में, इसको पंचअंग भक्ति बोलती है। ये महाप्रभु ने पंचअंग बहुत शक्तिशाली भक्ति के अंग बोले हैं। तो प्रायः ये पंचअंगों में मुख्य भक्तों का संग है, भक्तों के संग में ये सब चीजें बहुत अच्छी होती हैं। तो ये पंचअंग भक्ति में भगवान की कृपा और भगवान के भक्तों की कृपा, हरि की कृपा, गुरु की कृपा, वैष्णव की कृपा, इनसे ये संभव है। नारद के जीवन में उन भक्ति वेदांत वैष्णव की कृपा हुई, उससे हरि की कृपा हुई और उससे नारद को ये पद प्राप्त हुआ। तो पहले भगवान के भक्तों की कृपा, फिर भगवान की कृपा, और फिर अनुभव जीवन में होते। इसलिए सबसे ज्यादा जीवन में मुख्य है भक्तों के लिए हृदय में आदर होना चाहिए, भक्तों के लिए सेवा का भाव और प्रेम होना चाहिए। भक्तों की कृपा से ही सब कुछ संभव है। तो भक्तों के संग में रहना भक्तों के लिए हमारे लिए बहुत ज्यादा सेवा का भाव और आदर होना चाहिए, तो फिर कभी पतन नहीं होता है। इसके बाद प्रभुपाद जी का छोटा सा तात्पर्य है कि क्योंकि नारद भक्ति के मार्ग से चलता है तो वो कहीं भी जा सकता है, उसका पतन नहीं होता है। जबकि दूसरे ऋषि जिनका नाम यहां लिया है, नरसिंह पुराण में है कि मरीचि ऋषि सकाम कर्मों का आचार्य है, सनक आदि ऋषि ज्ञान मार्ग के आचार्य हैं, तो इन मार्ग वाले आध्यात्मिक जगत में ऐसे फ्रीली जा नहीं सकते हैं जैसे चार कुमार वैकुंठ के सातवें दरवाजे से आगे जा नहीं पाए। चार कुमार छह दरवाजा पार किया, सातवें दरवाजे के अंदर जा ही नहीं पाए, तो वैकुंठ में है चार कुमारों ने प्रवेश नहीं किया। जबकि नारद जब जाए चाहे तब वैकुंठ में जा सकता है। तो ऐसे अन्य ऋषि जो ज्ञान मार्ग से जाते हैं उनकी उनका जाना सत्य लोक तक संभव है, ज्यादा स्वर्ग लोग या सत्य लोक तक, वैकुंठ में प्रवेश उनके लिए आसान नहीं है। इसलिए जब तक वैकुंठ में कोई नहीं जाएगा तो वहां से वापस गिरना संभव रहता है। वैकुंठ में जाने के बाद न यद गत्वान निवर्तन्ते तद धाम परम मम, जो मेरे धाम में आ जाएगा उसका वापस पतन नहीं होगा। लेकिन जो भगवत धाम गया ही नहीं है तो वापस कैसे आएगा, गया ही नहीं। तो ये बाकी जो ऋषि हैं जो इन मार्ग के ऊपर चलते हैं, मरीचि है, सनक, सनातन आदि है, एक कर्म मार्ग है, एक ज्ञान मार्ग है, तो ये इनका रसा ये वहां पहुंचते नहीं है। जबकि नारद जो भक्ति के आचार्य हैं वो कहीं भी कभी भी आ जा सकते हैं। और इसलिए नारद भक्ति सूत्र से जो नारद के मार्ग के ऊपर चलता है वो भगवान के धाम में जाने का अधिकारी बनता है। तो श्री प्रभुपाद ने इस श्लोक से भाव ये लिया कि अन्य साधनों से, अब आगे नारद कहेगा कि अन्य साधन इतने काम के नहीं है, इतना फल नहीं देते हैं। तो आगे का श्लोक पढ़ते हैं। अब नारद जी कहते हैं मैं वहां जाता हूं, मैं जा सकता हूं। भाई जा सकते क्या, घूमने जाते हो? ये यहां लोग गंगटोक में आते हैं, प्रायः पर्यटक आते हैं, भाई घूमते रहते हैं, होटल में खाओ और फिर टैक्सी करो और अलग अलग जगहें देखने जाओ। तो क्या नारद तीनों लोकों में जा सकता है, आ सकता है, घूमने के लिए जाता है? बोला नहीं। क्या करता है नारद? तब कहता है देवदत्ताम इमाम वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषितम मूर्च्छत्वा हरि कथाम गायमानश्चराम्यहम्। मैं घूमने नहीं जाता हूं, नारद जी कहते हैं, देवदत्तम वीणा, भगवान विष्णु ने जो मुझे ये वीणा दी है, नारद जी के पास जो हो कीर्तन करने के लिए, जो कीर्तन करने के लिए नारद जी के पास यंत्र है उसका नाम है वादन यंत्र है वीणा, वीणा में होती है तार। तो कभी कभी कहते हैं सततम कीर्तयन्तो माम, तो सततम का मतलब सदा भी अर्थ होता है और सतंत सततम, तो जो तार वाली वीणा है जिससे बजा बजा कर भगवान का कीर्तन करता है, तार वाली वीणा। तो वीणा किसने दी है नारद को? तो कहते हैं नारद को वीणा देवदत्तम भगवान विष्णु ने दिए, भगवान नारायण ने ये वीणा का यंत्र नारद के हाथ में दिया है।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। मेरे को हनुमान जी ने जब वो सब देवताओं ने उसको आशीर्वाद दे दिया तो नारद जी एक दिन आए बोला कुछ गाइए तो पत्थर पिघल गए, तो नारद जी की वीणा उसमें चली गई, फिर गाना बंद किया वीणा अटक गई। अब हनुमान को बोलता है आप फिर दोबारा गाओ ये वीणा निकले, बोला नहीं गाऊंगा हमारे घर चलो। पिताजी आया घर ले गए, घर में घुमाया, फिर पिताजी को कहा तो नारद ने कि भाई इसकी वीणा तो खोलो, फिर हनुमान जी ने गाया। बोला आपने इसकी वीणा को क्यों पकड़ के रखा, बोला इतना बड़ा ऋषि आया है हमारे घर में चरण तो घुमा के जाए। तो ये नारद जी की वीणा का और नारद हनुमान जी का एक मेरे को ऐसे वो चिंतन याद आ गया। सो देवदत्तम इमाम वीणा, इमाम दिखा रहा है नारद जी को ये जो मेरे हाथ में वीणा पड़ी है ये मैं बाजार से खरीद के नहीं लाया हूं, ये इंस्ट्रूमेंट भगवान ने मेरे को नारायण ने दिया है। स्वर ब्रह्म विभूषितम, इसके अंदर से जो स्वर निकलते हैं वो ब्रह्म शब्द निकलते हैं। ये स्वर को प्रभुपाद ने लिखा है सारा गामा पा, ये जो स्वर है ये असल में भगवान के ये ब्रह्म शब्द हैं, उनकी वाणी से श्वासों से निकले हैं स्वर। और इनसे विभूषितम, ये भगवान के ये स्वर जो है वीणा के ये दिव्य है। और मैं इसको क्या करता हूं मूर्छ्यात्वा मूर्छत्वा, मैं इसको बजाता रहता हूं, मैं इसको बजाता रहता हूं। क्या करते हो बजा के, गाना गाते हो? नहीं, हरी कथा हरी कथा करता रहता हूं। और ये मैं हरी कथा करता हूं गाय मानस चरामी हम, मैं जहां भी जाता हूं मेरे हाथ में ये भगवान की नारायण की दी हुई वीणा है और इसमें से जो दिव्य स्वर हैं उनसे मैं भगवान की कीर्ति और कथा गाता हुआ विचरण करता हूं। और जहां भी कोई योग्य साधक मिलता है तो उनको मैं भगवान की भक्ति में लगाता हूं। तो भक्तों को इससे एक प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम भी ऐसे बाहर घूमते रहते हैं। अब आप लोग भी ऐसे हिल स्टेशन है गंगटोक सिक्किम, बहुत सुंदर पहाड़ी, गर्मी है नीचे जाते हैं तो दिल्ली कलकत्ता बॉम्बे में 40 टेम्परेचर चल रहा है और यहाँ 18-20 है, तो क्या हम यहाँ घूमने आए हैं? नहीं, नारद की परंपरा में वीणा नहीं है भगवान की दी हुई, लेकिन चेतना महाप्रभु ने मृदंग और खड़ताल दिए हैं, ये लेकर कीर्तन करना और भगवान की कथा गाना ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। भक्त लोग भी पूरे विश्व, प्रभुपाद जी पूरे विश्व में 14 बार भ्रमण किया तो क्या घूमने के लिए गए? कभी एक बार प्रभुपाद जी किसी ने कहा नैरोबी में कि प्रभुपाद जी चलेंगे आप चिड़ियाघर देखने, जू देखने, तो प्रभुपाद ने पूछा क्या होता है चिड़ियाघर में? बोले बहुत सारे जानवर होते हैं। बोले ये तो बाहर बहुत घूम रहे हैं, तो अंदर जाके क्या देखेंगे? ये तो दो पांव वाले पशु बहुत यहाँ घूम रहे हैं। तो अंदर चिड़ियाघर क्या देखने जाएंगे? ऐसा कभी साइट सींग के लिए प्रभुपाल ने कहा मुझे कहीं ले चलो, ऐसा उदाहरण नहीं मिल रहा है। और नहीं प्रचार करना है तो नरक जैसे जहां हिप्पी रहते हैं नशा करते हैं वहां जाने में भी प्रभुपाल को कोई आपत्ति नहीं है, नहीं तो और कहीं जाने की कोई इच्छा नहीं है। अगर कथा नहीं कीर्तन नहीं तो स्वर्ग भी भक्त के काम का नहीं है। हरी कथा नहीं है, हरी कीर्तन नहीं है, हरी भक्त नहीं है तो स्वर्ग भी हो स्विट्जरलैंड भी हो तो भक्त के लिए नरक है। और हरी कथा हो हरी कीर्तन हो हरी भक्त हो तो नरक भी भक्त के लिए वैकुंठ से ज्यादा। तो भक्त का नारद जी यहां शिक्षा दे रहे हैं जहां भी जाओ भगवान के नाम का कीर्तन करो, लोगों का कल्याण करो, वो भगवान को बहुत प्रिय है। भगवान को सबसे प्रिय है जो भगवान की शिक्षाओं को श्रद्धालु जनों तक पहुंचाता है। तो ये जो नारद जी का है, श्रील प्रभुपाद जी का तारे है, यहां तात्पर्य है कि नारद को ये वीणा भगवान श्री कृष्ण ने दी है, और ये कहां लिखा है? लिंग पुराण में। लिंग पुराण में लिखा है जो वीणा है नारद जी के पास, ये भगवान श्री कृष्ण ने दी है, और जीव गोस्वामी ने इस बात को लिंग पुराण से प्रकाशित करके प्रमाणित किया है। और फिर कहते हैं कि ये जो दिव्य वीणा है ये भगवान के समान है, क्योंकि दिव्य है, जो चीज दिव्य होती है वो जड़ नहीं है, ये वीणा जड़ नहीं है, ये दिव्य वीणा है। और शब्द यहां लिखे हैं, दिस ट्रांसेंडेंटल इंस्ट्रूमेंट इज आइडेंटिकल विथ लॉर्ड कृष्ण एंड नारद बिकॉज ऑल ऑफ देम आर ऑफ द सेम ट्रांसेंडेंटल कैटेगरी। इसका अर्थ क्या हुआ? जैसे भगवान श्री कृष्ण सच्चित आनंद है, जैसे नारद तीनों गुणों से ऊपर हो गया सच्चित आनंद है, ऐसे ही वीणा भी सच्चित आनंद है। इसलिए कहते हैं जो चीज भगवान की सेवा में लगती है वो चीज भौतिक नहीं होती, वो चीज भौतिक नहीं होती है, वो अपने आप में आध्यात्मिक स्तर की होती है। तो ये वीणा दिव्य है अपने आप में, और इस वीणा से जो स्वर निकलते हैं वो भी भौतिक नहीं है, ये मृदंगा, ये खड़ताल, इसके साथ जो हरे कृष्ण कीर्तन गाते हैं, इसके लिए प्रभुपाद ने जो तात्पर्य दिया है कि ये हरे कृष्ण महामंत्र शरीर से, इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से परे आध्यात्मिक दिव्य ध्वनि है। दिस चैंटिंग ऑफ द हरे कृष्ण इज बियॉन्ड बॉडी सेंसेस माइंड एंड इंटेलेक्चुअल, इट इज फ्रॉम ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म, इट इज ट्रांसेंडेंटल साउंड वाइब्रेशन, ये दिव्य ध्वनि है। ये तो गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, ये तो गोलोक धाम से श्री चैतन्य महाप्रभु लाए हैं। तो ये जो शब्द है ये डिक्शनरी के शब्द नहीं है, ये भौतिक शब्द नहीं है, ये दिव्य भगवान के, भगवान और भगवान के नाम में अंतर नहीं है। तो हरे कृष्ण कहते हैं तो राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, राधा रमण कह रहे हैं, तो ये दिव्य ध्वनि है। और ये कंपन शरीर के ऊपर नहीं, आत्मा को जब छूती है तो एक दिव्य आनंद का अनुभव कराती है। तो ये भगवान दिव्य, भगवान के भक्त दिव्य, भगवान के भक्तों के पास जो यंत्र भगवान के कीर्तन के लिए होते हैं वो भी दिव्य, और उनसे जो ध्वनि निकलती है वो भी दिव्य, और किसी भाग्यशाली को उस दिव्य ध्वनि को सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए तो वो भी दिव्य हो जाता है। ये हरे कृष्ण महामंत्र सामान्य नहीं है। और फिर प्रभुपाद ने एक शब्द कहा, इस मंत्र के जपते समय हमारा भाव कैसा होना चाहिए? जेन्युइन क्राय ऑफ ए चाइल्ड फॉर मदर। जैसे बेचारा नवजात बच्चा अपनी मां के लिए रोता है, ऐसे भक्त को ये मंत्र जपते समय बच्चे जैसी भावना होनी चाहिए। न संसार क्या कहेगा ये विचार नहीं होना चाहिए। बच्चा जब रोता है तो कौन सामने है, राजा है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे निरुपाधि होकर, निर्भय होकर, माता राधा है, माता राधा है जगतेर माता, हरे शब्द, हरि को जो हर कर हर ले उसको हरे बोलते हैं, जो हरि का हरण कर ले उसको हरे बोलते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण को भी अपने माधुर्य और प्रेम से हर ले, उसके मन को हर ले, भगवान का नाम तो है मनोहर, मन को हरता है, मुरली मनोहर, कैसे मन को हरता है? मुरली बजाकर मन को हरता है। ऐसे नारद जी भक्तों को वीणा बजाकर उनका मन हर के भगवान के चरणों में स्थापित कर देते हैं। तो मनोहर भगवान को कहते हैं, लेकिन भगवान मनोहर है, लेकिन राधा रानी मनोहर को भी हर लेती है। जैसे कृष्ण का एक नाम है
मदन मोहन। मदन कहते हैं कामदेव को, जो कामदेव को मोहित करे। एक बार कामदेव भगवान श्री कृष्ण के पास आए और कहा कि मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूं। तो भगवान ने कहा कौन सा युद्ध करोगे, दुर्ग के अंदर वाला या बाहर वाला? बोला ये क्या होता है? बोला दुर्ग के अंदर वाला युद्ध है, समाधि में मैं बैठ जाऊं फिर आप मेरे को विचलित करो, ये हुआ दुर्ग का युद्ध। तो बोला मैदान का युद्ध क्या है? बोला मैं रासलीला करता हूं और मेरे ऊपर आप आक्रमण करो और मुझे प्रभावित करो। तो कामदेव कहता है दुर्ग का युद्ध तो मैंने पहले बहुत किया है, ऋषि बैठते हैं समाधि में, मैं उनको विचलित करता हूं। भोलेनाथ को भी मैंने विचलित किया, उसने तो मेरा शरीर ही जला दिया। भोलेनाथ को देवताओं को जरूरत पड़ी एक असुर को मारने के लिए, कि भोलेनाथ का जब कार्तिक के पैदा हुआ, जब पैदा हो और देवताओं का सेनापति बने तब देवताओं की रक्षा हो, और भोलेनाथ तो समाधि में बैठे हैं तो अब वो संतान कैसे हो? तो कहा कि कामदेव को कहा कि भोलेनाथ को जगाओ, देवताओं को हित करना है। कामदेव ने 5 पुष्पों के बाण लेकर सब ऋतियों का साज सामान लेकर और भोलेनाथ को जगाना चाह, तो भोलेनाथ जागे तो सही लेकिन तीसरी आंख खुली, कामदेव का शरीर ही भस्म हो गया। तो कामदेव को अनंग बोलते हैं, अनंग का मतलब जिसको अंग नहीं है। वैसे अनंग कृष्ण को भी अनंग, काम गायत्री में अनंग कृष्ण के लिए शब्द है, उसका अर्थ है जो शरीर के स्तर से ऊपर है वही कृष्ण की भक्ति कर सकता है। अनंग की भक्ति करने के लिए अनंग बनना पड़ेगा। अनंग का मतलब शरीर और इंद्रियों से ऊपर जब हमारा भाव चला जाएगा तभी कृष्ण के इस भागवत रास आदि को समझने के लिए भौतिक चेतना से नहीं समझ सकते अनंग। तो फिर प्रार्थना की कामदेव ने कि हे भोलेनाथ मेरी ये स्थिति की है, मेरे शरीर कैसे प्राप्त होगा? तो कहा भगवान श्री कृष्ण जब धरती पे अवतार लेंगे और रुक्मणी और कृष्ण से तुम्हारा प्रद्युम्न के रूप में जब प्रकट होगा तब तुम्हारे को शरीर पुनः प्राप्त होगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने, कामदेव ने कहा मैं तो खुले मैदान में आपसे युद्ध करना चाहता हूं। तो भगवान रासलीला करने लगे, तो कामदेव रासलीला में भगवान के ऊपर बाण के लिए जैसे निशाना लेने लगे तो भगवान के सुंदर त्रिभंग ललित रूप को देख के मूर्छित हो गए। अरे भगवान ने कहा बच्चू अभी तो युद्ध शुरू ही नहीं हुआ, अभी तो मूर्छित हो गया, जा मेरे बच्चे तुम्हारे को शरीर ही मेरे घर में प्राप्त होगा दोबारा, जा तुम्हारे को यहाँ काम नहीं है युद्ध करने का। तो कामदेव को जीत लिया तो भगवान श्री कृष्ण का नाम हो गया क्या? मदन मोहन। लेकिन राधा रानी का नाम क्या है? मदन मोहन मोहिनी। मदन मोहन को भी जो मोहित कर ले। तो हरे कृष्ण मंत्र में राधा रानी हरे शब्द से संबोधित है जो हरि को मोहित करती है, और कृष्ण जो सर्व आकर्षित है, और राम जो राधा रमण है, यहां राधा रमण के भाव है रम्यति इति राम। तो राधा रमण भगवान, राधा कृष्ण भगवान, ये जो शब्द है ये दिव्य ध्वनि है, ये भौतिक शब्द नहीं है। ऐसे नारद जी के वीणा से निकलने वाले कोई स्वर भौतिक नहीं है। और फिर प्रभुपाद जी कहते सारा गामा पा सारा लिखा है, और फिर प्रभुपाद जी हमको एडवाइस दे रहे हैं। क्या एडवाइस दे रहे हैं? कि ये जो स्वर है ना ये भगवान की महिमा गाने के लिए है, ये प्रकट ही भगवान से हुए हैं। इनको भौतिकता के लिए उपयोग करोगे तो नारद स्वयं कहता है कि मैं जब उपभ्रंश गंधर्व था तो बड़ा अच्छा मेरे को गाना आता था, लेकिन ये सारा गामा पा मैं भौतिक गान में लगाया इसलिए मेरे को श्राप मिला, गंधर्व की योनि से नीचे गिर के मैं दासी पुत्र हुआ। लेकिन फिर भक्तों ने इतनी कृपा की कि दासी पुत्र से मैंने भक्ति करके साधन करके दिव्य नारद के शरीर को प्राप्त किया है। तो ये जो गाने की विद्या किसी को भगवान ने दी है तो ये विद्या भगवान के सेवा में लगानी चाहिए। ये सारा गामा पा ये सब भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। इसलिए जब कोई भगवान का कीर्तन करना है कर रहा है तो पहले भाव ये होना चाहिए, ये मैं, हम जैसे गौड़ीय वैष्णव जब ये कीर्तन करते हैं तो इस कीर्तन से हम श्री चैतन्य महाप्रभु अथवा पंच तत्व की पूजा कर रहे हैं। जैसे कोई चीज भगवान को अर्पण करते हैं, ये कीर्तन भगवान को अर्पण करना, भगवान की प्रसन्नता के लिए गाना है, और भगवान को अर्पण करने के बाद प्रसाद के रूप में वो ध्वनि सुनने वालों को मिलेगी तो सुनने वालों का कल्याण होगा। अगर मैं गाता हूं कि लोग कहें कि मैं अच्छा गा रहा हूं तो फिर वो गाना किसी के हित नहीं करेगा, उसकी आध्यात्मिक उन्नति नहीं होगी, उस गाने से आध्यात्मिक उन्नति नहीं होगी। जो भगवान को पहले अर्पण किया गया गाना, गीत भजन कीर्तन, और फिर जनता ने सुना तो भगवान का प्रसाद हो गया वो प्रसाद। इसलिए अब देखेंगे प्रभुपाद जी जब कभी गाते हैं तो आंखें बंद है और समाधि में जैसे गाते हैं, वो गाते हैं तो साक्षात जब गाना है वो साक्षात भगवान सामने खड़े हैं, उसकी महिमा गाते हैं। ऐसे कीर्तन करते समय भाव भगवान की पूजा कर रहा हूं मैं, जैसे भगवान का अर्चन किया जाता है ऐसे ही भगवान को कीर्तन से, चैतन्य महाप्रभु की पूजा कीर्तन से होती, और ये कीर्तन हमारी ये पूजा है, हमारी ये साधना है, हमारा ये सर्वस्व है, हमारा सब कुछ ये कीर्तन है। तो इसलिए ये कीर्तन को ठीक तरह करना चाहिए। अब आगे पढ़ते हैं, एक और श्लोक पढ़ लेते हैं, मैं समझा यह अध्याय पूरा होगा लेकिन नहीं होगा। ये श्लोक एक और पढ़ लेते हैं। प्रगायतः स्ववीर्याणि तीरथ पाद प्रियः स्वराः सर्वाः आहोतिव मे शीघ्रं दर्शनं याति चेतसी। अब जब हम ऐसे कीर्तन करेंगे, भ्रमण करेंगे, जगह जगह जाकर भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे तो फिर क्या होगा, इस कीर्तन का फल क्या है? प्रगायतः, 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 नारद जी कहते हैं प्रकृष्टेन रूपेण गायतः, अच्छी तरह से जब मैं गाता हूं, क्या गाते हो? स्ववीर्याणि, भगवान की महिमा गाता हूं, भगवान के जो दिव्य चरित्र हैं वो जब मैं गाता हूं, स्ववीर्याणि भगवान की दिव्य लीलाओं को, जो एक शब्द होता है ना, उत्तम श्लोक की महिमा जब मैं गाता हूं, वो किसकी महिमा गाते हो? तब कहते हैं तीर्थ पाद, तीर्थ पाद जिसके चरण सबको पवित्र करते हैं, और इस तीर्थ पाद का श्रीला प्रभुपाद ने अर्थ लिखा है श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण तीर्थ पाद है। प्रिय है सर्वाह, श्रवण करने में बहुत प्रिय है, भगवान की लीला जब कानों में पड़ती है तो बहुत आनंद देती है, बहुत प्रिय है। बोला ऐसे जब मैं गाता हूं, ये नारद का भाव बड़ा अच्छा है कि उस भगवान श्री कृष्ण की महिमा जब मैं आनंद में गाता हूं तो ऐसे लगता है कि मैं भगवान को बुलाता हूं। आहुत, आहुत, आहुत कहते हैं आवाहन, एक शब्द होता है इनविटेशन अंग्रेजी में, निमंत्रण, और एक शब्द होता है आवाहन। आप किसी को निमंत्रण दें वो आए ना आए उसकी मर्जी, लेकिन आप आवाहन करेंगे तो आना पड़ेगा, ना नहीं कर सकता। आवाहम्य, आवाहन कर दिया तो आना ही पड़ेगा। आहत का मतलब आवाहन करता हूं। अब एक महाभारत में कथा आती है कि जन्मेजय परीक्षित के पुत्र ने जब तक्षक के द्वारा अपने पिता को डसते हुए देखा तो उसको क्रोध आया। उसने ब्राह्मणों को कहा ऐसा यज्ञ करो जितने सर्प है वो सब यज्ञ में जल के मर जाए, तो सब ये जैसे करें सर्प सब आए। बोला अभी तक तक्षक क्यों नहीं आ रहा है, जिसने डसा था उसको तो मरना चाहिए। तो पुरोहित कह रहे हैं पूजा कराने वाले, महाराज जन्मेजय तक्षक इस वक्त इंद्र के आसन को लपेटा हुआ है और इंद्र ने उसको शरण दिया है। बोला इंद्र के साथ तक्षक का आवाहन करो। और ब्राह्मणों ने कहा इंद्र तक्षक सहित आवाहयामी, इंद्र के आसन के साथ इंद्र आसन और तक्षक ऐसे आने लगा यज्ञ कुंड की तरफ। जब आधे में पहुंचा तब इंद्र ने कहा मैं काहे के लिए मरूं, और इंद्र वहां से आधे से आसन से उठ के भाग गया। तो वहां लिखा है कि देवताओं के पुजारियों को सावधान होना चाहिए, जब स्वयं देवता पे संकट आता है तो आधे में छोड़ के भाग जाता है। तो आधे में छोड़ के इंद्र तक्षक को चला गया। अब तक्षक नीचे आ रहा था और जलने ही वाला था, लेकिन एक ब्राह्मण उस वक्त जो जिसका ननियाल मामा था सांप, उसने आके कहा कि एक वरदान दीजिए। तो बोला यज्ञ के बाद वरदान दूंगा, लेकिन अभी बोला तक्षक आ ही गया है अब दे दो वरदान। तो ब्राह्मण क्या चाहिए, बोला यज्ञ को बंद कर दो। तो उस वक्त यज्ञ को बंद किया, इसलिए तक्षक फिर बच गया। लेकिन आवाहन करने का मतलब है आपने आवाहन किया तो जिसका आवाहन करते हो उसको आना पड़ेगा। एक महात्मा के पास हम गए माउंट आबू में, भगवान अकेले राम जी का मंदिर है, नहीं कहीं भी जाएंगे तो सीताराम लक्ष्मण होगा लेकिन वहां अकेले राम है। कहीं एक आधा मंदिर जहां बैठे हुए राम जी हैं, खड़े हुए नहीं है। तो वो महाराज हमको कहने लगे, हम कहते हैं आवाहयामी, आपको जब भी आना है आपको यहां आना पड़ेगा, आप ना नहीं कर सकते। और टाफियां होती थी जिसको पसंद होता, कोई उसको अच्छा लगता था, भक्त सेवा के भाव से आया तो एक टाफी का प्रसाद देता था, सबको नहीं देता था, जिसको देता था इसका मतलब उसको वो भक्त की सेवा पसंद हुई या भक्त का आना अच्छा लगा। तो बोला आवाहन करता हूं आना पड़ेगा, जब भी कभी आप ऊपर माउंट आबू आओगे तो आपको राम मंदिर में आना पड़ेगा। तो ये नारद जी कहते हैं, जब शब्द ये लिखा है भगवान श्री कृष्ण जिनके गुण सुनने में बड़ा आनंद देते हैं, कर्ण के लिए अमृत है, वो एकदम मेरे हृदय के ऊपर आके प्रकट होते हैं जैसे मैंने उनका आवाहन किया है। अब देखो ये बहुत बड़ी बात है, क्या दूसरों को सुनाने के लिए गा रहे हैं? नहीं नहीं, अपने हृदय में भगवान का प्रकट्य होता है गाते। आहुत इव में शीघ्रम, तत्काल भगवान मेरे हृदय में प्रकट हो जाते हैं जैसे मैंने उसका आवाहन किया है। दर्शनम याति, और मुझे उसका दर्शन याद हो जाता है चेतसी मेरे हृदय में। अब आप देखेंगे जब हम कीर्तन करते हैं तो क्या भगवान हृदय में प्रकट होते हैं क्या? नारद कहता है मैं जब कीर्तन करता हूं श्री कृष्ण का गुणगान करता हूं तो भगवान श्री कृष्ण मेरे हृदय में ऐसे प्रकट होते हो जाते हैं जैसे उसका आवाहन किया है, जैसे उनको बुलाया है, ऐसे आके प्रकट हो जाते हैं। और इसके तात्पर्य प्रभुपाद जी का बहुत अद्भुत है। प्रभुपाद जी कहते हैं ये एक मनोविज्ञान है, एक मनोविज्ञान है। हर एक आदमी अपना गुणगान पसंद करता है। आप कहें कि भाई यहां माधवकांत ने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया, माधवकांत ये सुनेगा उसको बड़ा अच्छा लगेगा। किसी वजह कहे अच्छा लगेगा, भाई क्यों अच्छा लगेगा? बोला कि भगवान जिससे हम सब पैदा होते हैं ये सब गुण भगवान में तो है, तो भगवान की भी कोई कीर्तन करता है गुणगान करता है ये भगवान को भी अच्छा लगता है। तो जैसे आप किसी की बात करोगे उसकी महिमा गाओगे तो वो भागता हुआ आएगा और खुश हो जाएगा, ऐसे जब भगवान की महिमा गाते हैं, गुणगान करते हैं, तो भगवान खुश हो जाते हैं और भागते हुए आते हैं। ये भागवत के दूसरे मंगलाचरण के श्लोक में है, शुश्रुषुभी तत्क्षणात्। जैसे ही जिसकी सुकृति का उदय हुआ, जिसका पुण्य का उदय हुआ और भागवत सुनने की इच्छा मन में धारण की, तो अवरुद्ध देते भगवान उसी वक्त आके उसके हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। क्यों? अरे मेरा गुणगान सुनने जा रहा है, तो भगवान कहते हैं मैं इसके दिल में बैठ जाता हूं। तो भगवान उस भक्त की दिल में भागते हुए आके बैठ जाते हैं, जो भगवान की लीला गुण राप रूप श्रीमद् भागवत भगवत गीता, भगवान के वाणी का, भगवान की लीला का, भगवान के रूप का जो कीर्तन करता है, भगवान उसके हृदय में प्रकट हो जाते हैं। भगवान दिव्य हैं। ये जो प्रभुपद का तात्पर्य एक ही मुख्य बिंदु पे है कि ये मनोविज्ञान है कि हर एक आदमी अपना गुणगान पसंद करता है, तो भगवान भी अपना गुणगान पसंद करते हैं। लेकिन भगवान और हम में अंतर ये है कि वो परिपूर्ण है, तो नारद जब कीर्तन करता है तो साक्षात भगवान उनके हृदय में प्रकट हो जाते हैं। तो ये बड़ा अनुभव की बात है कि हमारे कीर्तन की इतनी शुद्धि होनी चाहिए कि हृदय में भगवान का अनुभव होने लगे। इसलिए कहते हैं साधु संत जब तात्पर्य लिखते हैं तो वो कोई शब्दों का अर्थ नहीं लिखते हैं, उन वक्त भगवान उनके हृदय में प्रकट होते हैं और वो जो लीला होती है वो लीला चलती है, जो भाव उनके चेहरे के होते हैं उनको भावार्थ के रूप में महात्मा लोग लिखते हैं। इसका मतलब जब लीला का वर्णन करते हैं तो वो लीला हृदय में स्फुरित होनी चाहिए, वो लीला हृदय में प्रकट होनी चाहिए। जब कीर्तन करते हैं तो भगवान हृदय के ऊपर प्रकट होना चाहिए। तो जब भी भगवान का कैसे गुणगान करेंगे और भक्ति के भाव से करेंगे तो भगवान हृदय में प्रकट हो जाएंगे। अब एक शब्द लिखा है, ये पढ़ लेते हैं। लॉर्ड एट वंस बिकम विजिबल टू द ट्रांसेंडेंट आइज ऑफ द प्योर डिवोटी बाय रिफ्लेक्टिंग हिमसेल्फ ऑन द मिरर ऑफ द हार्ट ऑफ द स्पिरिचुअल टेलीविजन। प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं कि हमारा भक्त का हृदय दूरदर्शन हो जाता है, हार्ट बिकम्स टेलीविजन। को उदाहरण कहां दें? अगर टेलीविजन का देना हो तो व्यास देव के पास ऐसा विज्ञान था जिससे उन्होंने संजय के हृदय को दूरदर्शन बना दिया और महाभारत के होने वाले सारे युद्ध को वो अपने हृदय में देख पा रहा था। केवल युद्ध को नहीं देख पा रहा था, जो लड़ने वाले योद्धा के मन में क्या है वो भी उसको दिख रहा था। तो ऐसे जो भगवान के भक्त हैं, जिनका हृदय शुद्ध हो गया है, उसके हृदय में भगवान की लीला प्रकाशित होती है और दूरदर्शन चालू हो जाता है। तो नारद का हृदय भगवान की लीला की के लिए एक स्क्रीन बन जाता है, पर्दा बन जाता है, उसके ऊपर भगवान अपनी लीला को रिफ्लेक्ट करते हैं, रिफ्लेक्शन भगवान की लीला का आने लग जाता है। और क्यों करते हैं भगवान? जब भगवान भक्त की सेवा से आनंदित होते हैं, तृप्त होते हैं, प्रसन्न होते हैं, तब भक्त के हृदय में अपना ऐसा अनुभव कराते हैं। तो कब कराते हैं? भगवान की जब इच्छा तब प्रकट होंगे, लेकिन होते हैं भक्तों के हृदय में। ऐसे रूप गोस्वामी के जीवन में हम देखते हैं कि वो बैठे हैं समाधि में तो राधा रानी कृष्ण को कहती है फूल तोड़ के दो, डाली को छोड़ देती है, लटक जाती है तो हंसते हैं। तो ये लीला उनके हृदय में चल रही है। तो साधु संत भगवान की, भगवान अपनी करुणा कृपा से, उनके कीर्तन से, उसकी भक्ति से, उसके नाम सुमरण से, भागवत के श्रवण से, भागवत के कीर्तन से जब भगवान संतुष्ट हो जाते हैं तो कृपा करके उसके हृदय में ये सब प्रकाशित अपने लीलाओं को कर देते हैं और फिर प्रभुपाद जी ने लिखा है कि ये मनोविज्ञान है, भगवान को अपनी लीला बहुत अच्छी लगती है, इसलिए नारद को भगवान का दर्शन हर समय होता है। तो आज हमने 33 श्लोक तक पढ़ा है, बाकी मेरे ख्याल में 34, 35, 36 कल तक हो जाएगा, कल तक ये अध्याय पूरा हो जाएगा। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा? तो आज के हमने श्लोकों में क्या पढ़ा कि जहां भी कभी जाना हो भक्तों को भ्रमण करने, तो नारद का भाव हृदय में रखना कि हमें जाना है, कीर्तन करना है, प्रवचन करना है, प्रचार करना है। घूमना हमारा उद्देश्य नहीं है, हमें प्रचार करने जाना है। घूमने जाते हैं, प्रचार करेंगे तो घूमना अपने आप हो जाएगा। और दूसरा, जब कीर्तन करें तो भगवान को अर्पण करने के लिए करें, भगवान की पूजा समझ के करें, पब्लिक को प्रसन्न करने के लिए नहीं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए करें। कथा करें तो भी पहले संकल्प करना चाहिए। ये अंतर है भक्ति में और निष्काम कर्म में। निष्काम कर्म करने के बाद भगवान को अर्पण किया जाता है, लेकिन भक्ति पहले अर्पण करके फिर की जाती है। इसलिए कीर्तन करने से पहले, कथा करने से पहले ये संकल्प करें, आज मैं कीर्तन कथा भगवान श्री राधा कृष्ण गौर निताय श्रील प्रभुपाद और वैष्णव की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं। ये मन में भाव कर ले कि ये कथा कीर्तन मैं हरि गुरु वैष्णव की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं। रसोई कर रहे, किचन में बना रहे हो, तो ये भी भगवान की प्रसन्नता के लिए, हरि गुरु की प्रसन्नता के लिए, गौर निताय की प्रसन्नता के लिए। कोई भी काम पहले अर्पण करके फिर करना चाहिए, ये हुई भक्ति। और करके उसका फल अर्पण करें, ये निष्काम कर्म योग होंगे। तो जो नौदा भक्ति है उसमें पहले अर्पण है फिर करना है, अर्पित है, पहले अर्पण करना है। तो हमको आज नारद के व्यासदेव को और व्यासदेव के माध्यम से सबको देने वाली शिक्षाओं से ये समझना चाहिए कि हर कार्य पहले भगवान को अर्पण करके फिर करना चाहिए, तो फिर भगवान की कृपा से अपने आप वो सफल होगा। कहते अकेले अकेले जब हम दौड़ते हैं तो उसको रेस बोलते हैं, और भगवान के साथ दौड़ते हैं तो ग्रेस बोलते हैं। तो अकेले काम करेंगे तो रेस हो जाएगी, और भगवान के साथ भक्तों ग्रेस हो जाएगा। तो इसलिए हमारे को भगवान की कृपा या ग्रेस के लिए काम करना चाहिए। कथा करें, कीर्तन करें, प्रसाद बनाए, ये हाल साफ करें कथा से पहले, मंदिर साफ करें, तो भगवान की प्रसन्नता, भगवान के भक्तों की प्रसन्नता, ये भाव मन में रहे। इसलिए वेदिक है कि कृष्ण प्रीति अर्थे पाठे विनियोग, कृष्ण प्रीति अर्थे जप विनियोग, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं। राधा कृष्ण प्रीति अर्थे, हरि गुरु वैष्णव प्रीति अर्थे, ये एक महामंत्र समझ बना लेना चाहिए हर काम करने से पहले। हरे कृष्ण, धन्यवाद। हाँ जी, इसलिए 71 करते हैं ना, 1000 को 71, इसलिए कि बीच में संध्या हो जाएगी तो कुछ कम होता है, इसलिए संध्या संधि होती है। युग के भी भाग होते हैं, अंतिम भाग एक प्रथम चरण युग का, अंतिम चरण वो फिर काटा कूटी करके, इसलिए बोलते हैं 71 युग हो जाते हैं। तो सहस्र को 71 इसलिए कहते हैं कि बीच में संधियां आती हैं। लेकिन ये तो मैथमेटिकली कैलकुलेशन है कि कितना कहाँ होता है, यह सब कुछ भागवत में लिखा हुआ, तो इसलिए सहस्र को 71 चतुर्युगी बोल देते। तो ये मनवंतर अवतार है, ये मनवंतर अवतार एक अलग श्रेणी है अवतारों की। जैसे अजीत भगवान का अवतार हुआ वो समुद्र मंथन के समय, वो गजेंद्र के समय हरि मनवंतर का अवतार है, चौथे मनवंतर में ये कथा हुई, पांचवे में ये हुई। तो हर मनवंतर में एक अवतार है, लिखा है भागवत में। चौथे मनवंतर में समुद्र में गजेंद्र हुआ, इस मनवंतर में समुद्र मंथा की कथा हुई तो भगवान हरि का अवतार था, तो ऐसे हर अवतार कब हुआ है, उस वक्त मनवंतर का कौन सा, तो मनवंतर के अवतार अलग होते हैं, शरणीय है। जैसे गुण अवतार है ऐसे मनवंतर अवतार होते हैं, हर मनवंतर में एक अवतार होता है, वो सिलेक्ट करता है इंद्र को, इलेक्ट नहीं करता है, सिलेक्शन होती, जिसको भगवान चाहे उसको सात ऋषि अलग अलग ऋषि चुने, बहुत ऋषि हैं उनमें से किसी युग में वो होंगे, किसी युग में वो होंगे, तो ये ऋषि बदलते रहते हैं। हरे कृष्ण, श्री प्रभुपाद की।